आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और बुध 28 दिसंबर की खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी। सबसे पहले शहर सुर्खियां। 3 दिनों में मदद की 600 कॉल्स पर रेस्क्यू किए जाने के बाद न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर की शहरियों से साहिलों पर एहतियात बरतने की अपील। पार्लियामेंट में इंडिजीनियस वॉइस के कयाम पर रेफरेंडम अगले साल दिसंबर में होगा और यूनाइटेड कप के आगाज से ऑस्ट्रेलियंस टेनिस में नए दौर की इब्तिदा। ये तो हैं अब तक की खास खास खबरें। आइए अब खबरें सुनते हैं तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी एल्बनीज़ ने ऐलान किया है कि इंडिजीनियस अफराद की वॉइस ऑफ पार्लियामेंट बॉडी के कयाम पर रेफरेंडम अगले साल दिसंबर तक करवाया जाएगा। आज क्वींसलैंड में होने वाले वुडफोर्ड के सकाफती मेले में शिरकत के दौरान रेफरेंडम के मुमकिन वक्त का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस पार्लियामानी वॉइस के जरिए न सिर्फ एब ओरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स को आइनी शनाख्त मिलेगी बल्कि उन्हें मुतासर करने वाले कवानीन पर उनकी मशावरत भी हासिल की जा सकेगी। Mr. Albanese ne Australian se is referendum ki himayat ki appeal bhi ki.
This is not a government proposition. This is a proposition from the Australian people, a gracious offer which should be accepted. I'm pleased that Andrew G will be campaigning for a yes vote. But I say to members of parliament as well, don't miss the opportunity to be a part of enriching our nation and making us even stronger in the future.
क्रिसमस की छुट्टियों के पहले 3 दिनों में मदद की 600 रेस्क्यू कॉल पर लोगों को फौरी मदद पहुंचाई गई है और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने इसी तनाजुर में आवाम से साहिलों पर मोहतात रहने की अपील की है। इस बार क्रिसमस की छुट्टियों पर रेस्क्यू कॉल्स की तादाद पूरे साल की ऐसी कॉल्स का 15% है। हालिया वाकये में न्यू साउथ वेल्स के टैमवर्थ के मुकाम पर 2 टीनएजर्स डूब कर जहाँ बहक हो गए। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पैरोटेट का कहना था कि साहिलों पर हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा होने की जरूरत है।
It's a reminder to us all, go out, enjoy the sunshine, enjoy the best beaches in the world, but please keep safe, swim between the flags, if you're on a boat, wear a life jacket, do the things that we know can keep us safe during the summer period.
बॉक्सिंग डे के मौके पर ब्रिस्बेन के शुमाल में एक घर में घुसाने वाले 2 नौजवानों के हाथों एक खातून की हलाकत से कम्युनिटी सकते में है। 2 बच्चों की वालदा एमा लोवेल के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 17-साला लड़कों को गिरफ्तार किया गया था मगर अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जिसके बाद अवामी सतह पर टीनएजर्स के खिलाफ कत्ल जैसे संगीन मुकदमात पर कानून को सख्त बनाने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। 26 दिसंबर को घर में घुसाने वाले 2 17-साला नौजवानों के हाथों मिसिज लोवेल का कत्ल हो गया था जबकि उनके शौहर वारदात के दौरान घर और अपनी अहलिया को बचाने की कोशिशों में शदीद जख्मी हुए थे। दूसरी तरफ पीर की सुबह एडिलेड में 55-साला शख्स जख्मों की ताब न लाकर जाँ बहक हो गया। एक 16-साला लड़की को उस शख्स की हलाकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के दिन एक खानदान की गाड़ी उलटने के वाकये में 3 बच्चे मौजाना तौर पर जिंदा मिल गए हैं जबकि बच्चों के वालदैन इस एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। इतवार से लापता गाड़ी पीर को जाए वकू पर मिली जिसमें वालदैन की लाशों के अलावा 3 बचने वाले बच्चे भी शामिल थे। सबसे छोटा बच्चा 2 दिन तक गाड़ी में फंसे रहने के बाद मौजाना तौर पर जिंदा ढूंढ लिया गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पुलिस इस अंदोनाक ट्रैफिक हादसे की तहकीकात कर रही है। सेहत के माहरीन ने ऑस्ट्रेलियंस को तिब्बी मुआयने के लिए वक्त निकालने का मशवरा दिया है। खवातीन की सेहत के एक कौमी सतह के जायजे के मुताबिक कोविड-19 के बाद तिब्बी मुआयने के दौरान 10 में से हर 4 खवातीन की सेहत मजीद अबतर हुई है। जीन हैलीज की डॉक्टर टीसा किंग का कहना है कि ज़ियाबतीस और आरज़ाए कल्ब जैसी बीमारियों की जल्द तशखीस बेहद अहम है।
In terms of screening, it's generally done for very common diseases like cardiovascular disease, which causes around 1/3 of all deaths and is a big cause of disability in Australia. And there's around 1.7 million Australians who have diabetes in Australia currently, and around 1/2 of those don't know they have diabetes.
और अब कुछ दीगर खबरें। रूसी वजीर खारजा सरगई येलोरोफ ने यूक्रेन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यूक्रेन रूस के मुतालबात पूरे करे जिनमें यूक्रेनी इलाकों को रूस के कंट्रोल में देना भी शामिल है वरना रूसी अफवाज यूक्रेन की तकदीर का फैसला करेंगी। अमरीका ने रूसी पेशकश को धमकी और चालबाजी से ताबीर किया है। مگر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پارلیمان سے خطاب میں نئے سال کے سیاسی اور حربی اہداف کو اہم قرار دیا.
This week will be important for Ukraine from a political point of view. We're entering the next year and must retain a common understanding of our national goals. Of course, this is the liberation of our land from the enemy, as well as the restoration of Ukraine, the return of our people home.
امریکہ میں یکبستہ ہواؤں اور شدید برف باری سے نظام زندگی منجمد ہو گئی ہے، جبکہ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے. نیو یارک کے شہر بیفلو میں لوگوں کو آج بھی گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ شہر کے مغربی علاقے 4 فٹ برف تلے دبے ہوئے ہیں. خراب موسم کے باعث امریکہ بھر میں 1,22,000 سے زیادہ گھروں کو بجلی کی فراہمی منقطع ہے. کئی شہروں کو ملانے والی بڑی شاہراہیں بند ہیں اور ہزاروں پروازیں منسوخ کی گئی ہیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ہزاروں ہندو سرکاری ملازمین خدشات کے باعث مسلم اکثریتی وادی میں خدمات انجام دینے سے انکار کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے مطابق رواں برس مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ کے بعد سرکاری ملازمین کا یہ اقدام سامنے آیا ہے، جبکہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حکومت کے کام سے انکار کرنے والوں کی تنخواہیں روکنے کے اعلان کے بعد احتجاج میں اور تیزی آئی ہے. پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اپنا 10 روزہ طویل دورہ امریکہ مکمل کر کے پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں. دورے کے دوران انہوں نے اقوام متحدہ میں مصروفیات کے ساتھ واشنگٹن میں امریکی حکام، اراکین کانگریس اور اپنے ہم منصب اینٹنی بلنکن سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. مبصرین کے مطابق بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانے کی کوششوں کا سلسلہ ہے، اور اس بارے میں حتمی طور پر اگلے سال ہی پتہ چل سکے گا کہ انہیں اس دورے میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے. بلوچستان کی اہم ترین بندرگاہ اور ساحلی شہر گوادر میں پیر کی صبح سے حالات کشیدہ ہیں، اور حق دو تحریک کے خلاف سیکورٹی اداروں کی کارروائی کے خلاف بڑی تعداد میں مقامی افراد سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہوئے کئی شاہراہیں بھی بند کر دیں، جس پر پولیس نے جگہ جگہ آنسو گیس استعمال کی. دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر I-10/4 میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد شہر کے 5-سٹار ہوٹلز میں دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر پولیس نے نیا سیکورٹی پلان جاری کر دیا ہے، جس کے تحت اسلام آباد میں 25 مقامات پر عارضی چیک پوسٹ قائم کی جا رہی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ میریٹ ہوٹل سمیت دیگر اہم عمارتوں پر سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے. دوسری طرف بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ اور کوہلو سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں میں فوج کے افسر سمیت 6 اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں، جس کی ذمہ داری کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بقول ان کے اپوزیشن لیڈر کو آخری وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، نیب اور الیکشن اصلاحات کا حصہ بنیں. دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ جب اغوان سرحد پر لگی باڑ اکھاڑی جا رہی تھی تو اس وقت خفیہ ایجنسیوں کا کام سیاسی انجینئرنگ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ ISI ایک منظم اور باصلاحیت ادارہ ہے، اسے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے بہت سے علاقے دھند اور کوہر کے باعث مواصلاتی طور پر کٹ گئے ہیں. ٹرینیں کئی گھنٹوں کی تاخیر کا شکار ہیں، اور لاہور کے ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر ہوا ہے، اور موٹر ویز بھی بدلتی صورتحال کے اعتبار سے کئی مقامات پر بند کی جا رہی ہیں، اور مسافروں کو احتیاط کا مشورہ دیا جا رہا ہے. آسٹریلیا میں کل سے شروع ہونے والے یونائیٹڈ کپ کے آغاز سے ملک میں ٹینس کے نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے. راؤنڈ رابن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں اور خواتین کے سنگل ڈبل مقابلوں میں 18 سے زیادہ ممالک کے ٹینس کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. یونائیٹڈ کپ کے مرحلہ وار مقابلے سڈنی، پرتھ اور برسبن میں ایک ساتھ ہو رہے ہیں، جبکہ فائنل 6 سے 8 جنوری تک سڈنی میں کھیلے جائیں گے. آسٹریلیا کی ٹیم کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی ایلیکس ڈی مینر کا کہنا ہے کہ وہ ان مقابلوں کے لیے پرجوش ہیں.
Drive playing for our country, representing the green and gold. There's always a lot of passion and pride, and it's a great time of the year.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کے اوپنرز نے دوسرے روز پاکستان کی پہلی اننگ کے اسکور 438 کے جواب میں 165 رن بنا لیے تھے. کراچی میں کھیلے جا رہے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے آغاز میں بابر اعظم اور سرفراز احمد نے 5ویں وکٹ میں 196 رنز کی شاندار شراکت کی. एमसीजी में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में तीसरे दिन जनूबी अफ्रीका पर ऑस्ट्रेलिया बड़ी बढ़तरी हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाला ये टेस्ट डेविड वार्नर का 100वां टेस्ट मैच है, जिसमें उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सिडनी टू होबार्ट 2022 की कश्ती रानी की तारीखी रेस में एंड्रू कोमेंचे की कश्ती ने फतह हासिल की है। जीतने वाली कश्ती ने 2017 के रिकॉर्ड से 3 घंटे पहले फिनिश लाइन उबूर की, जबकि लॉ कनेक्ट दूसरे नंबर पर रही। और अब तजारती खबरें और मौसम के लिए निदा तहसीन।
आइए नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलवी डॉलर के मुकाबले में दूसरे ममालिक की करेंसी की शराय तबादला पर। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर है 152.17 पाकिस्तानी रुपए के, 0.67 अमरीकी डॉलर के और 55.76 भारतीय रुपए के। आप सुन रहे थे मुख्तलिफ ममालिक के करेंसी के रेट्स। ऑस्ट्रेलिया के बेशतर इलाकों में जुमेरात के रोज़ मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, लेकिन बड़े शहरों में दर्जा हरारत क्या रहेगा, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। पर्थ में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 17 रहेगा। एडिलेड में मतला अबर आलूद रहने के साथ दर्जा हरारत 23 से 13 रहेगा। मेलबर्न 20 और 13 के दरमियान रहेगा। होबार्ट में दर्जा हरारत 20 और 11 रहेगा, जबकि कैनबरा में दर्जा हरारत 26 और 14 तो रहेगा, लेकिन वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश के इम्कान है। सिडनी का दर्जा हरारत भी अबर आलूद रहेगा और दर्जा हरारत 23 से 19 के दरमियान रहेगा। ब्रिस्बन 28 और 21, जबकि डार्विन में दर्जा हरारत 29 और 26 के दरमियान तो रहेगा, लेकिन बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब इक्वेटर की दूसरी जानब यानी पाकिस्तान के मौसमी हालात पर एक नज़र। पाकिस्तान को सर्दी ने अपनी लपेट में ले रखा है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गरज चमक के इम्कान हैं। बड़े शहरों जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर और क्वेटा शामिल हैं, में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 14 और 8, कराची 27 और 13, लाहौर 16 और 9, पेशावर 13 से 6 और क्वेटा में दर्जा हरारत 8 से 11 के दरमियान रहेगा। जबकि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मौसम ठंडा और दर्जा हरारत 21 से 12 के दरमियान रहेगा।
शुक्रिया निदा, और यहीं पर SBS उर्दू की खबरें खत्म हुईं।